ओम शांति। तो दिल क्या चाहता है कि संगम पर हम निरंतर बाबा के साथ का अनुभव करते रहें। सारे कल्प का ये छोटा सा संगम सर्व प्राप्तियों से हम सब आत्मों को संपन्न कर देता है। जो प्राप्तियां 21 जन्म निरंतर भरपूर रहती है उसका आधार केवल अभी का पुरुषार्थ है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम सबको ये जो संगम युगी समय नसीब हुआ है हम सबके लिए बहुत बड़ा वरदान है ये। और जहां वरदान होता है वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम सब बाबा की वरदानी आत्माएं हैं जो हमारी हर एक्टिविटी में कमाई ही कमाई है। चाहे वो सेवा में, चाहे वो किसी की मेहमानबाजी करने में, किसी के साथ मीठे बोल चाल, अपनी मधुर व्यवहारिकता से हर पल कमाई कमाई है। तो एक कमाई का युग है ये। बाबा कहते जितना जमा करना उतना कर सकते हो, खुली छुट्टी है। कोई कह नहीं सकता है कि मुझे कम प्राप्ति हो रही है, मुझे ज़्यादा हो रही है, या बाबा से मुझे कम मिल रहा है। खुला भंडारा है। अब डिपेंड हमारे पर करता है कि हम इस भंडारे से कितना लेते हैं, उसका कितना हम अनुभव करते हैं, स्वयं को कितना समर्थ बनाते हैं। क्या वो निरंतर स्मृति हमें रहती है? ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है ये, जो बाबा कहते देवताओं से भी उत्तम है। तो देवताओं से भी ज्यादा खुशी हम सब ब्राह्मणों को होनी चाहिए। तो सदा खुशी रहती है? तो आज बाबा ने हमारे जीवन के एक पैमाना बताया, जो पुरुषार्थ का पैमाना। अगर हमें संपूर्ण निश्चय है तो चार बातें बताई। कौन कौन सी? नहीं, वो तो निश्चय है लेकिन उसका परिणाम क्या बताया? ये तो निश्चय है स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर, परिवार पर, लेकिन उसका परिणाम क्या है? अगर हमें पक्का निश्चय है हर बात के ऊपर, चारों बातों के ऊपर, उसके अलावा और भी बहुत सारे निश्चय है। हाँ, उसका, हाँ जी, उसका परिणाम है सहज योगी जीवन। अगर हमारा जीवन सहज योगी है, मेहनत नहीं है, चलते फिरते नेचुरल योग की अवस्था बनती जा रही है, तो निश्चय में हम अटल हैं। और दूसरी निशानी कौन सी बताई? निर्मल। क्या निर्मल? क्या निर्मल? स्वभाव। हमारा स्वभाव अगर परिवर्तन हो रहा है तो हमारा निश्चय पक्का है। स्वभाव में सौम्यता आती जा रही है, मिठास आती जा रही है, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को छोड़ने की दृढ़ इच्छा बलवती हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा व्यवहार एकदम निर्मल बन जाएगा, लेकिन निर्मल स्वभाव बनाने के पथ पर हम अग्रसर हैं। कमी कमजोरियां तो आएंगी आएंगी, बाबा ने कहा अंत तक आनी है, लेकिन वो कमी कमजोरियां हमें प्रभावित नहीं करेंगी। स्वयं के स्वभाव संस्कार से हम तंग नहीं होंगे, आएंगे, लेकिन उन पर जीत पाने का हम पुरुषार्थ करेंगे। ऐसा नहीं सारे तुरंत निकल जाएंगे। अगर सारे स्वभाव संस्कार निकल गए तो फिर तो यहां बैठे किस लिए? फिर तुम स्वर्ग में होने चाहिए। तो बातें आएंगी, लेकिन निर्मल स्वभाव बनाने के लिए हम निरंतर अग्रसर रहेंगे। तो दूसरी निशानी थी कौन सी? निर्मल स्वभाव। स्वभाव अर्थात हम स्वयं को कितना भाव देते हैं, अपने मूल्यों को कितना जानते हैं, इतने सारे बाबा सम्मान देते हैं, उस सम्मान में कितना स्थित रहते हैं, जो हमारी नेचुरल नेचर है, स्वभाव जो वह स्वतः काम करता है। कैसे काम करता है? जो लंबे समय से हमारी आदतें पड़ी होती हैं, संकल्पों के आधार पर, कर्मों के आधार पर, जो संस्कारों में बदल जाती हैं, वो हमारा स्वभाव नेचुरल नेचर में काम करता है। तो हम सारे दिन में स्वयं को कितना महत्व देते हैं, अर्थात सम्मान की सीट पर हम कितना समय स्थित रहते हैं, अर्थात समर्थ स्मृति में हम कितना समय रहते हैं। परसों वरदान था ना, परसों के मूल्य था, कल का ही था, समर्थ स्मृतियों से संपन्न होना कल का था। तो समर्थ कितना रहते हम, तो सवेरे सवेरे वरदान ले लेना बाबा से, समर्थ स्मृतियों से संपन्न आत्मा भव। तो हमेशा हम अपने भाव में स्थित रहें, स्वभाव स्वरूप हमारा जो ओरिजिनल रूप है, पीछे भी तीन बिंदियां बताई थी ना, तो हम अपने अपने असली अस्तित्व में कहाँ तक स्थित रहते हैं, स्वयं के महत्व को कितना रखते हैं, दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आते हुए भी हम अपना और दूसरों का कितना महत्व रखते हैं। नहीं तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है, हम तो अपने सम्मान में स्थित रहते हैं लेकिन दूसरों को हम सम्मान की स्थिति से नहीं देखते हैं, दूसरों को हम साधारण ही देख रहे हैं, ये भी यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। जिस सम्मान में अगर स्थित रहते हैं तो उसी उसको भी उससे ऊंचे सम्मान से देखना है, क्योंकि हमारी दृष्टि सामान्य रहती है, हाईएस्ट एटीट्यूड होना चाहिए, ऊंचा दृष्टिकोण होना चाहिए हर एक के प्रति। बाबा हमको कितना ऊंचा दृष्टिकोण से देखते हैं, बाबा जब आते हैं तो हम तो वैसे शारीरिक रूप से तो सब सामान्य दिखते हैं, लेकिन जो हमारी आंतरिक अवस्था है, जो हमारा अनादि आदि संस्कार है, जो देवता ही हमारा जो पद है, तो बाबा कितना उस दृष्टिकोण से सबसे पहले हमको वैसा ही संबोधन करते हैं। तो हम स्व के भाव में कितना स्थित रहते हैं, सारे दिन में स्वयं को और दूसरों को कितना महत्व देते हैं। जब तक हम अपने आप को महत्व नहीं देंगे, दूसरों को भी महत्व नहीं दे पाते। जैसी हमारी सोच रहती है वैसी हमारी दूसरों के प्रति भी दृष्टि भी वैसी रहती है। इसलिए अपनी सोच को बहुत ऊंचा बनाना है, समर्थ स्मृतियों से हमेशा आत्मा प्रकाशवान रहे, जगमगाती रहे, ऊंचे ऊंचे ज्ञान रत्नों से खेलती रहे। तो दूसरी निशानी थी निर्मल स्वभाव, और तीसरी शुभ भावना की वृत्ति। अब ये बहुत बड़ी बात है, सबके प्रति शुभ भावना, और उससे पहले तो स्वयं के प्रति शुभ भावना। स्वयं के प्रति शुभ भावना अर्थात क्या? कभी भी हम निराश नहीं हों, लेकिन कभी निराश भी हो जाते हैं। हमेशा हम ऊंची ऊंची स्थिति में स्थित रहें। जो बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी तो हो लेकिन स्वयं के परिवर्तन करने में कमजोर हो गए, तो स्वयं के प्रति शुभ भावना नहीं है इसका अर्थ। तो जब तक स्वयं के प्रति शुभ भावना नहीं है या स्वयं के प्रति रहम दिल नहीं है, अर्थात हम अपने खजानों को जो हमको भगवान से गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुआ, सौगात के रूप में, प्रसाद के रूप में, वरदान के रूप में, अगर हम उनका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो भी हम अपने आप पर बेरहमी कर रहे हैं। जैसे इतने महावाक्य ऊंच महावाक्यों से बाबा हमको श्रृंगारते हैं, सारे दिन में हम उसका कितना चिंतन कर पाते हैं। अगर उसके उन महावाक्यों के प्रति हम थोड़ा सतर्क नहीं रहेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो आत्मसात कैसे करेंगे? जो चीज़ हमको मिली है कि आप सारे दिन में ये चीज़ खाते रहना, और हमने खाई नहीं तो तंदुरुस्ती रहेगी, शरीर में ताकत आएगी? नहीं आएगी ना। डॉक्टर टेबलेट देगा, दवाइयाँ देगा, इंजेक्शन देगा, और लेके हमने रख दिए तो ठीक थोड़ा नहीं होंगे, बीमारी ठीक होगी? तो बाबा भी सुप्रीम सर्जन है, हमें इतने इतने बड़े सम्मान देते हैं, महावाक्यों से श्रृंगारते हैं, वरदान देते हैं, तो अगर सारे दिन में हम स्मृति में नहीं लाते हैं तो हम कमज़ोर होते जाएंगे, और ही कमज़ोर होते जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन का जैसे लगेगा कैसा जीवन मिल गया ये, ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे, निश्चय डगमगाएगा, संशयात्मक बुद्धि बन जाएगी। तो निर्मल स्वभाव और शुभ भावना की वृत्ति, हमाश वृत्ति अर्थात क्या, लंबे समय से जो हम संकल्प करते हैं बार बार सोमान को या महावाक्यों को हम उसका अध्ययन करते रहते हैं, तो हमारे अंदर जो संस्कारों के रूप में अंदर सूक्ष्म रूप से जो एक वाइब्रेशन बैठ जाते हैं वो वृत्ति के रूप में स्वतः काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माता या भाई है जिसको हम निरंतर यही देखते रहते हैं कि मुरली पढ़ते हैं, सेवा में है, एक्यूरेट दिनचर्या है, तो उसके प्रति हमारी वृत्ति कैसी हो जाएगी, बहुत ऊंची वृत्ति हो जाएगी। और हम देखें अगर कोई आपस में गपशप मार रहे हैं, व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट की बातें नहीं है उसका हम चिंतन करें, तो हमारी वृत्ति कैसी हो जाएगी। तो वृत्ति स्वतः काम करती है, लेकिन कोई भी हमको दिखे सबके प्रति बाबा कहते शुभ भावना की वृत्ति हो, कैसा भी हो। पिछले संडे की मुरली में था ना, कोई फरिश्ता नहीं है, क्रोध भी करता है, फिर भी क्या देखो उसको, फरिश्ता ही देखो। इतने ऊंची शुभ भावना होनी चाहिए, कितना बड़ा होमवर्क दे दिया बाबा ने हम सबको, माना हमारे में वो होमवर्क करने का सामर्थ्य है, तभी तो भगवान ने हमको दिया है, किसी दूसरे को थोड़ा दिया है। हमको जो होमवर्क मिला माना हम उसको करने में विशेषज्ञ हैं, हम उसके, वो हमारे में ताकत है, वो हमारे में शक्ति है, हम उसको कर सकते हैं, तभी तो भगवान ने हम सबको होमवर्क दिया। अगर हमको उसका पता ही नहीं होता तो क्यों बाबा देते, और उसके लिए बाबा हमको सफलता का वरदान भी दे देते हैं कि सफलता तो तुम्हारी हुई पड़ी है, विजय तुम्हारी हुई पड़ी है, रिपीट ही तो करना केवल। तो तीसरी बात थी शुभ भावना की वृत्ति, और चौथी बात, चौथी निशानी कौन सी बताई, निश्चय बुद्धि की, सदा आत्मिक दृष्टि। ये क्या आत्मिक दृष्टि, सदा आत्मिक दृष्टि, तो बड़ा भारी काम है ये भी, सदा आत्मिक दृष्टि। लेकिन लंबे समय का संस्कार वो स्वतः काम करता है, अगर अभ्यास करते हैं, जो बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास, तो बहुत काल का अभ्यास हमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्वतः हो जाता है, लेकिन उसका अभ्यास पहले स्वयं के प्रति करना है। लंबे समय तक एक ही संकल्प में, एक ही चित्र में अपने अंदर बैठ जाओ कि मैं बस अकेला हूँ और मस्तक में चमक रहा हूँ, बस आसपास कोई नहीं है, खाली इतना भी योग करो। जैसे आप मधुबन में हैं तो एक बहुत सुंदर योग का प्रयोग किया जा सकता है। जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, कमरे में रहते हैं, तो ये हमेशा ये सोचो मैं कमरे में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है कमरे में, अकेली आत्मा हूँ मैं, या इस मधुबन में मैं इसमें सिर्फ अकेला, अकेली आत्मा चमक रही हूँ, चारों तरफ सन्नाटा है। सन्नाटे की बात बाबा ने कब कही थी, परसों के मुरली में, क्या कहा था, हाँ, अशरीरी बनने की नंबर वन ड्रिल है अशरीरी बनना है, इससे क्या होता है सन्नाटा छा जाता है। तो अगर कमरे में माताएं रहती हैं, अगर सारे ही सोचें या भाई रहते हैं कि मैं अकेली आत्मा हूँ, तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। तो आज ये सब करना और कल उसका परिणाम दिखना चाहिए, सबको अनुभव होना चाहिए, क्योंकि अभी हर बात का अनुभव करना है अकेले का। एक है हम सबके बीच में रहते हुए अकेले हैं, अपने आप को अकेला, दूसरा यह है कि अकेला, पास में भीड़ नहीं है, उस अकेले का अनुभव अलग है, लेकिन भीड़ में रह के अकेले का अनुभव करना बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ी साधना है, और ये करना ही है। आप देखेंगे जो लोग भीड़ भाड़ में रहते हैं उनको नींद भी कैसे आ जाती है ना, सब अनुभवी होंगे, कहीं ना कहीं परिस्थिति से गुजरे होंगे, जितना मर्जी शोर शराबा हो तुरंत नींद आ जाती है, कुछ भी होता रहे। तो यहाँ तो अगर बाबा के घर में रहते हैं, इतने सेवादारी भाई बहन इकट्ठे रहते हैं, और कोई खराटा मार रहा है, कुछ मार रहा है, तो फिर उसमें हमको नींद आनी चाहिए। अगर नींद आ रही है तो हमारे अभ्यास की कमी, जो बाबा कहते हैं पब्लिक में प्राइवेट का अनुभव, तो ये अनुभव बढ़ाने हैं, क्योंकि अंत में इतना शोर शराबा होगा और बाबा कहेंगे चलो अशरीरी भव, और हम सोचे नहीं फलाना तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, अब थोड़ा शांत हो जाओ, योग चल रहा है, अशरीरीपन का अनुभव करो, कोई नहीं एक दूसरे की सुनने वाला, अपना ही पुरुषार्थ काम में आएगा। इसलिए बाबा कहते नंबर वन ड्रिल है अशरीरी बनने की ड्रिल। तो जब भी मौका मिला एक सेकंड भी, एक सेकंड भी, एक एक सेकंड जमा करते करते बहुत जमा हो जाएगा। जो बाबा कहते हैं पूरी पूरी से क्या होता है, तालाब भरता है। पूरी क्या होती है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो एक एक सेकंड का अगर हम अशरीरीपन का अनुभव भी करते रहेंगे, बहुत लंबे समय का वो जमा होता जाएगा, और वो जो हमारी आदत पड़ जाएगी वो नेचुरल नेचर काम करेगी। इसी तरह से आत्मिक दृष्टि का भी ऐसे ही है। एक है आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति होगी तो आत्मिक दृष्टि स्वतः होगी। अगर हम स्वयं ही आत्मा का अनुभव करें तो ना वो स्थिति अनुभव होगी, ना वो दृष्टि, ना वो आत्मिक बोल निकलेंगे, ना शुभ भावना के बोल निकलेंगे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही कच्चा है। हमारे ज्ञान का फाउंडेशन क्या है, सबसे पहला आत्मा का फाउंडेशन है। जो हमारे यज्ञ के आधार स्तंभ है, दादियां हैं, बाबा मम्मा सबने ज्यादा अभ्यास किसका किया, उसी का किया है। तो लंबे समय तक अलग अलग संकल्पों से इसका अभ्यास हमको, उसमें हमको पारंगत हो जाना है, मास्टरी करनी है। और इस पुरुषार्थ के भी बहुत सारे स्कोप हैं, ये कोई मायने नहीं रखता कौन कितने साल से ज्ञान में चल रहा है। ज्ञान हमारे में कितने साल से चल रहा है वो मायने रखता है। कोई लास्ट में आया और फास्ट चला गया, अर्थात उसने आते ही अपने आप को ज्ञान में डुबो दिया एकदम। अंत में बाबा ये नहीं पूछेंगे तुम कितने साल से और सेवा हमने की नहीं और पुरुषार्थ किए नहीं, आत्मा का अनुभव किया नहीं, पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस के संकल्प चलते रहे, तो कमाई कहाँ हुई, सारा खाता खाली दिखेगा। और बाबा ने तो कहा अंत में क्या होगा, साक्षात्कार कराऊंगा, बिना उसके थोड़ा बाबा बता देंगे, प्रूफ बताएगा ना। एक सेकंड में टीवी खोलेगा, बाबा ने पिछले संडे भी टीवी खोली थी, क्या देखा था उसमें, क्या देखा था पिछले संडे की टीवी में, हाँ जी हाँ, कार्टून शो मिक्की माउस। बाबा देखते हैं बच्चे कैसे उतार चढ़ाव करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरी टीवी नहीं खोल के बैठ जाना, लेकिन हम तो खोल लेते हैं। कौन कौन देखता टीवी, बाकी नहीं देखता कोई भी। देखो हम अपने आप को कितना ठगते हैं, सचमुच है ना। अगर हम विश्लेषण करें अपनी लाइफ का, इस ब्राह्मण जीवन की लाइफ का, कि जो हमको देखना नहीं चाहिए था और हमने देखा, कितना टाइम हमारा चला गया, तो हम अपने प्रति बेरहमी कर रहे हैं। पता है इससे कोई फायदा नहीं हुआ हमको, नुकसान ही नुकसान है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, और दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करते तो बार बार फेल हो जाते हैं फिर, और फिर वो संस्कार बन जाते हैं, फिर कमजोरी हो जाती है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको दिल शिकस्त कर देती हैं। तो स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है और अपने आप ही छूटना पड़ेगा, कोई हमारे लिए दूसरा योग नहीं करने वाला, खुद को ही करना पड़ेगा। दूसरे के वाइब्रेशन से हम टेम्परेरी हमारी स्थिति ऊंची हो सकती है, लेकिन स्वयं का खाता खुद को ही जमा करना पड़ेगा, खुद को ही अपनी कमी कमजोरियों की जो जंजीरें हमने खुद ही बांध रखी हैं स्वयं ही खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको कैसे बांधा है वो हमको खुद ही पता है कि कौन कौन से संस्कार हमारे में हैं, अभी वो कहाँ कहाँ हमारी उंगलियाँ चली जाती हैं। इन उंगलियों को अच्छी आदत डालनी है, बात करनी है उंगलियों से। क्या बात करेंगे, ओहो इतनी सौभाग्यशाली ये उंगलियाँ भगवान की सेवा के लिए हैं, भगवान की अमानत है ये, तो ये उंगलियां कहाँ चलनी चाहिए हमारी, सेवा के लिए चलनी चाहिए। लिखने में परमात्म चिंतन लिखो, आत्म चिंतन लिखिए, बाबा से रू ना लिखिए, बाबा को खत लिखिए, बाबा से हालचाल पूछिए। तो इन कर्मेंद्रियों को ना बहुत मीठा बनाना है। देवताओं के अंग अंग में क्या था, खुशबू थी, तो कहाँ भरी, संगम पर। ज्ञान की खुशबू, गुणों की खुशबू अंग अंग में समा जाए, अभी का तो गायन है ना वो। तो इसमें हमें अपने प्रति संपूर्ण जागरूक, खुद को स्वयं ही जागरूक करना है। दूसरा कोई जागरूक करेगा निकल गया इसमें, वो बाबा सार्वजनिक रूप से मुरली में सब सुना देता है, खुद को खुद ही जगाना पड़ेगा वो समय। और लास्ट में होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि जाना तो हम सबको अकेले है, किसके साथ तो हमको जाना नहीं है, अकेले का पुरुषार्थ ही काम करेगा, अकेले आए अकेले जाना ये अलग बात है कि भरपूर होके जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो हमको स्वयं व्यक्तिगत पुरुषार्थ ही काम में आएगा। तो सारे दिन में देखना है कि अगर हमारी आत्मिक दृष्टि नहीं है तो कहाँ कहाँ हमारी कमी कमजोरी है, जहाँ हमारी वृत्ति चंचल हो रही है, दृष्टि चंचल हो रही है, कहाँ हमारे निश्चय का फाउंडेशन कमज़ोर है। बाबा कहते हैं बच्चे फलक से तो कहते हैं क्या कि हम पक्के निश्चय बुद्धि हैं, तो बाबा कहते फिर हार क्यों जाते हो, कभी कभी हार कभी कभी जीत, ऐसा क्यों है फिर? अगर फलक से कहते हैं निश्चय बुद्धि हैं तो क्यों हार जाते हो? और फिर चार प्रकार के निश्चय कौन कौन से? अच्छा बाबा ने तो चार प्रकार के बताए, इसके अलावा कौन से निश्चय होने चाहिए हमको, और कौन कौन सा निश्चय होना चाहिए? अपने पार्ट पर निश्चय, बिल्कुल, जो हमको पार्ट मिला है उस पर पूरा निश्चय। नहीं तो मुझे ये सेवा क्यों मिली, वो मिलनी चाहिए थी, है ना, या मुझे यही संबंध संपर्क में हमारे रिलेटिव्स यही क्यों मिले, हम दूसरे घर में जाना चाहिए था। और कौन सा निश्चय? संगम युग पर समय का निश्चय, हाँ, और ड्रामा में आ गया वो। तो चार प्रकार के निश्चय, सबसे पहला बाबा के ऊपर निश्चय। तो बाबा के ऊपर सभी को निश्चय है, है? तभी तो बैठे हैं इधर सही बात है, तभी तो इधर बैठे हैं। तो बाबा पर निश्चय कैसे हुआ, कैसे निश्चय हुआ बाबा के ऊपर और बाद में छोड़ देता है? शुरू शुरू में तो उंगली पकड़, हाँ, क्योंकि हमारे सबके जीवन में कोई ऐसी क्रिटिकल समस्याएं, प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां आई होंगी जहां संसार वाला कोई व्यक्ति उभार नहीं सका, बल्कि वो तो डुबाने वाले थे, और ऐसे मौके पर बाबा ने आके उंगली पकड़ ली, और कुछ समय तक उंगली पकड़ी और फिर बाद में छोड़ दी अभी तुम ताकतवर हो गए, हाँ, अब चलो तुम चलो, अब देखो आगे क्या होता है। तो पहले पहले बाबा सुनहरी सपने तो अच्छे अच्छे दिखा देते हैं, है ना, स्वर्ग के बादशाह बन जाएंगे 7 दिन के कोर्स में, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, लेकिन बाद अब आप चलो लायक बन गए तो आप चलो, तो फिर हमारी निश्चय की परीक्षा 3-4 साल के बाद शुरू होती है। 3-4 साल बाद तो अच्छा पक्का निश्चय रहता है ना, इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार मिल गया, इतनी अच्छी सेवाएं मिल गई, इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन मिलता है, कितने ड्रामा का ज्ञान मिल गया, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर 3-4 साल के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, रेगड़ियाँ पहनते पहनते थोड़ा चलने लगता है, फिर बाबा कहते हैं अब चलो अपने आप से, फिर हमारी निश्चय की परीक्षा शुरू होती है, फिर विघ्नों का आना शुरू होता है, फिर विघ्न हमको परिपक्व बनाते हैं, फिर धीरे धीरे ताकत आती है ना। जैसे कोई भी माँ है तो बच्चे को कब तक मालिश पालिश करते रहेगी, बड़ा होने के बाद मालिश पालिश करेगी? अगर बड़ा बच्चा माँ के सामने बैठ जाए और बोले मेरी मालिश करो, तो माँ क्या करेगी? मालिश वालिश चीज़ करेगी तो हम बाबा के बच्चे समर्थ बच्चे हैं कि बाबा कहते हैं अपनी अपने दम पर चलो। भगवान के बच्चे हमेशा उंगली पकड़ के तो चलेंगे नहीं, उसके समान है। तो बाबा हमें अपने समान बनाने के लिए अपना सब कुछ हमारे पर न्यौछावर कर देते हैं, इसलिए बाबा जन्मते हम सबको सारे वरदान दे देते हैं, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि सब वरदानों से संपन्न बना देते हैं। तो बाबा पर निश्चय, दूसरा स्वयं पर निश्चय, ये सबसे बड़ा निश्चय है। ये स्वयं पर निश्चय, बाबा कहते हैं कि स्वयं के निश्चय बच्चे डगमगा जाते हैं। कैसे डगमगा जाते हैं? हाँ जी, थक जाते हैं, चल जाते हैं, और हाँ मुख्य बात ये होती है कि भगवान इतने बड़े बड़े टाइटल देते हैं, तुम तो जहान के नूर हो, प्रकृति के प्रकृति पति हो, विश्व कल्याणकारी हो, आधार मूर्त हो, उधार मूर्त हो, पूर्वज हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, परम पवित्र आत्मा हो, हाँ जी मास्टर भगवान हो, हाँ मास्टर, हाँ मास्टर सदगुरु हो, मास्टर सदगुरु हो, तो इतने सारे, हाँ जी सत बाप सतगुरु सत टीचर, हम उसके बच्चे, तो इतने सारे टाइटल लेते लेकिन हजम नहीं होते हमको, क्योंकि दवाई बड़ी हैवी डोज दे दिया है। हाँ, ड्रामा पर निश्चय। तो इतने बड़े बड़े टाइटल हजम क्यों नहीं होते हैं? उसकी जुगाली नहीं करते हम। गाय को घास भी कब हजम होता है? जब वो जुगाली करती है। तो हम सब कौन हैं? भगवान की गौएं हैं, तो जुगाली तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो वो संस्कार भारी पड़ जाते हैं, है ना, भारी पड़ जाते हैं। अब उन संस्कारों को ना बदल देने का भी हाँ टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, टाइम लगता है। तो बाबा हमको इतने टाइटल देते हैं, तो वो तब हजम हो गए जब उन पर हम चिंतन करेंगे गहराई से, उन महावाक्य से प्रेम करेंगे, उन महावाक्यों को निहारेंगे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाई से कितना लगाव होता है, जिसको अच्छा पद पाना होता है कितनी मेहनत करते हैं, वो दिन रात पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। तो हमको तो इतना ऊंचा पद मिलना है और किताब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, मुरली को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बाबा कहते क्या मेरे राजा बचे हैं, इतने बेपरवाह हो गए हैं। हाँ जी, पढ़ाई, हाँ पढ़ाई पर निश्चय, बिल्कुल। माता जी को कितना निशान देखो। तो हमें स्वयं पर निश्चय चाहिए, जो भी हमको बाबा से प्राप्ति होती है उन प्राप्तियों को संजो के रखना है, उनको जीवन में अनुभव में लाना है, उनका स्वरूप बनना है। अगर हमारे जीवन में वो अनुभव में नहीं आता है तो जैसे जीवन में आधा अधूरा नीरस जीवन लगता है। हर चीज़ हमारे जीवन में समा जाए, वो नेचुरल नेचर बन जाए, ज्ञान का हर एक पॉइंट। और उसके लिए जैसे बताया माता ने टाइम लगता है, ऐसे ज्ञान के लिए भी टाइम लगता है। तो हम तो अभी बाबा के भक्त नहीं है, बाबा के कौन है माता जी? बच्चे। कौन से बच्चे? ने माता जी बताएंगे। हाँ जी, कितने स्किल दे, बात मत पूछो। तो बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, है ना। तो अभी तो भक्ति के संस्कार पूरे हो गए, बारिश बच्चे हैं, उसके लाडले बच्चे हैं, शक्तिशाली बच्चे हैं, अभी पता चल गया सारा ही। हाँ, फरियाद वाली बात आएगी, बोला फरियाद नहीं करो, याद करो। तो हमको स्वयं पर निश्चय चाहिए। तीसरा निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। ड्रामा पर निश्चय कैसे करेंगे? जो बीत गया वो कल्याणकारी, और जो नहीं बीता वो भी कल्याणकारी। लेकिन बाबा कहते हैं कभी कभी तो ड्रामा भी कहते हैं, हिलते तो रहते हैं। बाबा को हमारी हर नब्ज का पता, नस नस का पता है कि कौन सी नस इनकी गड़बड़ चल रही है अभी। हिलते भी रहते हैं। तो ड्रामा को हम जितना सारे दिन में साक्षी अवस्था का अभ्यास करेंगे तो ड्रामा पर हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा। और ड्रामा के संबंधित जितने भी बाबा ने महावाक्य उच्चारित किए हैं उन पर थोड़ा नज़र दौड़ानी है सारे दिन में। तो ड्रामा के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा है? ये ड्रामा एक्यूरेट है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है, ये खेल चल रहा है, बनी बनाई बन रही है, नथिंग न्यू, वो रिपीट हो रहा है। और इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इस ड्रामा में जो होना चाहिए वही हो रहा है। तो मुझे क्यों नहीं पसंद है? जब भगवान को ड्रामा पसंद है तो मुझे भी पसंद आना चाहिए। हम क्यों कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ, हर एक चीज जो है ड्रामा अनुसार एक्यूरेट चल रही है। हाँ, लेकिन इस ड्रामा में हमको ये देखना है कि हमें अपना पार्ट श्रेष्ठ कैसे बनाना है। ये तो है ड्रामा को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये देखना, इस ड्रामा में हम सभी हीरो हीरोइन एक्टर हैं। हमारा वो पार्ट है जो संसार को प्रकाशित करने वाला है। एक है ड्रामा को ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं, लेकिन उस ड्रामा में हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारी क्या जिम्मेवारी है? भगवान ने इस ड्रामा में हमको क्या देखकर चुना है वो हमको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, वो कभी कभी दुनिया वाले याद दिलाते हैं कि अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहो। बिल्कुल, ड्रामा जो हमेशा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना चाहिए, है ना। तो एक बार क्या था, हर बात को पॉजिटिव में लेना है ना। तो एक बार मच्छर दंपत्ति थे, हैं, नर मच्छर मादा मच्छर, ठीक है। उनके एक बच्चा पैदा हुआ, छोटा मच्छर, ठीक है। तो उसको पापा कहता है, मच्छर पापा, कि तुम अभी उड़ के जाओ, चक्कर मार के आओ और आकर अपना अनुभव सुनाना कि पहली उड़ान कैसी रही। तो बच्चा, छोटा बच्चा, नन्ना सा बच्चा उड़ के गया हुआ, उड़ते उड़ते बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द घूम के आया, आखिर में वापस पहुंच गया। तो फिर वो मम्मी पापा पूछते हैं, बताओ कैसी रही पहली उड़ान। बोला, बात मत पूछो, जिधर जिधर से मैं गुजरा ना, सब लोग मुझे तालियां बजा रहे थे। अब इसका क्या अर्थ हुआ, वो मारने के लिए कर रहे थे लेकिन उसने पहले एटीट्यूड पॉजिटिव कि तालियां बजा रहे थे मुझे। तो हमको हर बात पॉजिटिव तरीके से लेनी चाहिए इस ड्रामा में। तो तीसरा निश्चय ड्रामा का, और चौथा सबसे बेस्ट है परिवार का, परिवार पर निश्चय। और ये परिवार तो हमारा क्या है, सुरक्षा कवच है। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है तो हर एक से हम, हमारी जो वृत्ति है ना, गुण उठाने की वृत्ति बन जाएगी। अगर नेगेटिव रहती है तो सब में क्या देखेंगे, बुराइयां देखते रहेंगे। तो बाबा कहते खिटपिट होती है, और परिवार में खिटपिट है तो फिर माला में कैसे आएंगे। माला को अलग अलग धागे में थोड़ी बनती है, एक ही धागे में सारे मणके परोने हैं। और हम सभी अलग अलग स्वभाव संस्कार के, अलग अलग स्टेट के हैं, अलग अलग भाषाओं वाले हैं, और एक ही धागे में परोना है, हाँ, फिर भी मिलके रहते, कितनी बड़ी बात है, बाबा की कमाल है ना, तो बाबा की कमाल है। तो हम सभी एक ही माला के मणके हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। कौन सी विशेषता बताई बाबा ने, क्योंकि संसार वाले केवल धर्म स्थापन करते हैं लेकिन यहाँ राज्य स्थापन करते हैं हम। तो इस ब्राह्मण परिवार की ये विशेषता है कि यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना हो रही है। वसुदेव कुटुंबकम की हम ये किताबों में बचपन से पढ़ते थे लेकिन दिखाई का ही नहीं देता था, यहाँ आके दिखा सारा वो तो प्रैक्टिकल में वो यहाँ आकर दृष्टिगोचर हुआ, है ना। बचपन से हम किताबों में, टीचर बड़े जोर शोर से पढ़ाते थे, नारे लगाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन जब हम बाजार में जाके लड़ाई झगड़ा देखते तो पछता ही नहीं था कि पढ़ा क्या रहे, वो तो है ही नहीं कहीं। तो हम सोचते थे कभी ऐसा भी संसार होगा क्या। तो प्रैक्टिकल में फिर हमको दिखाए जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, जो बाबा कहते हैं बन मन की काठी। तो हम सभी बाबा के बच्चे परिवार की एक माला के सूत्र में है, पिरोए हुए माला के मणके हैं। तो कौन सा निश्चय, परिवार में निश्चय। ये परिवार हमको क्या करता है, निखारता है, हमारी विशेषताओं को निखारता है, हम आगे बढ़ाता है। हमारे अंदर जो भी विशेषताएं जो दबी पड़ी हैं, क्योंकि एक दो की विशेषताओं को देखकर हमको उमंग उत्साह आता है कि ये भी कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, आता कि नहीं आता है। तो और वैसे भी आप अनुभव करो, मधुबन में आकर वो भी काम सीख जाते हैं जो आप पहले जिंदगी में कभी किया ही नहीं होगा। तो बाबा कितनी सारी विशेषताओं से हमको संपन्न बना देते हैं, जो बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो वो परिवार में रह के ही बना जा सकता है, अकेले में नहीं रह के बना जा सकता है। नहीं तो बाबा कहते, कोई कोई बच्चे कहते हैं बाप से प्यार तो ठीक है लेकिन परिवार से प्यार थोड़ा भारी पड़ जाता है। लेकिन बाबा ने भी कहा, परिवार में पास तो सब में पास, चैरिटी बिगेन्स एट होम। और सचमुच ऐसा परिवार सारे जीवन में, सारे कल्प में मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, कोई कुछ कह भी देता है तो किस लिए कहता है, हमारे में कमी है, हमको आगे बढ़ाने के लिए तो कहता है ना। लेकिन वो कमी अगर हम अपने उन्नति का साधन बना लें तो हम उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर उस कमी को पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर हम कमी का चिंतन करते रहेंगे, फिर जो विजय निश्चित होती है, निश्चित विजय नहीं होगी। जो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित विजय, फिर क्या चलेगा, व्यर्थ का चिंतन, क्यों क्या ऐसे कैसे। तो सारा दिन इसी में हमारा चलता जाएगा तो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव फिर कब करेंगे, वो जो वास्तविक खुशी होनी चाहिए वो कब करेंगे, जो सारे दिन में हल्कापन रहना चाहिए वो कब अनुभव करेंगे। हाँ जी, हाँ फ्लाई की जगह वाई हो जाएगा, वो दो चार संडे पहले था फ्लाई की जगह बाई। तो बाबा कहते हैं फ्लाई करना, वाई वाई नहीं करना। तो हर एक की विशेषताएं देखने का, चश्मा पहनने का हमेशा प्रयास करते रहना है। ऐसा नहीं है कमी कमजोरियां दिखाई नहीं देंगी, दिखाई देंगी, लेकिन अगर दिखाई देती भी हैं तो यदि हम शुभ भावना से भरपूर हैं तो दूसरों के प्रति जो कमी कमजोरियां, वो कमी कमजोरियां अपने आप ही समाप्त होती जाएंगी, क्योंकि परिवार तो हमारा ना। अगर परिवार में लौकिक में भी अगर देखो, अगर घर में थोड़ा सा कमजोर होता है तो उसको हम सपोर्ट करते कि नहीं करते, सहयोग देते कि नहीं देते हैं। तो ये तो इतना बड़ा भगवान का चुना हुआ परिवार है, एक एक खुशबूदार फूल है, कहाँ कहाँ से बाबा एक एक फूल को ला के इस बगिया में सुगंधित सुगंध से भर रहा है। तो कितना हमारा एक दो के प्रति सम्मान सत्कार होना चाहिए, कितनी ऊंची भावनाएं होनी चाहिए, कितना ऊंचा एक दूसरे को श्रेष्ठ सम्मान में स्थित होते हुए देखना चाहिए। जितना हम स्वयं को सम्मान में स्थित करेंगे उतना दूसरों को भी सम्मान में स्थित होने की हम दूसरों के प्रेरणा दे सकते हैं। तो निश्चित विजय, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित विजय, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी निश्चय है अभी नहीं है ऐसा नहीं है, सहज हो जाएगा हर चीज, सहज हो जाएगी। और क्या बताया बाबा ने, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत स्थिति। तो सदा निश्चिंत रहते हैं, सदा निश्चिंत, बाबा कहते परिस्थिति तो आएंगी, समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, कई प्रकार की परिस्थितियां आएगी, लेकिन हम निश्चय बुद्धि हैं तो हमेशा निश्चिंत रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। अगर निश्चय बुद्धि नहीं होंगे तो हलचल में आते रहेंगे, डावाडोल होता रहेगा निश्चय। और कब डावाडोल होता है, जब कोई बीमारी आ जाती है और परिस्थिति आ जाती है। बीमारी के समय अगर हमको भगवान की बजाय दूसरे लौकिक संबंधी ज़्यादा याद आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लौकिक याद नहीं, याद तो आएंगे, लेकिन हमारी रग नहीं जानी चाहिए वहाँ। उसमें अगर बाबा को हम यूज़ कर रहे हैं लंबे समय से, सुप्रीम सर्जन का हमने लंबे समय से उसके संबंध का अनुभव किया है, तो वो अनुभव उसमें पहले याद आएगा। जिसको लंबे समय से साथी बना के रखा वही संस्कार पहले आएगा, नहीं तो बाबा कितने अंत में धोखा दे देंगे। और हमने प्रैक्टिकल में एक दो एग्जाम्पल देखे हुए हैं, ब्राह्मण लाइफ में जो ज्ञान योग के समय सेवा नहीं, बिना सेवा के ही अपने टाइम को वेस्ट कर रहे, तो अंत में उनको वही संस्कार सामने आए, वही लौकिक में लौकिक वाले याद आए, या वही कैंची चला रहे उधर वही सेवा याद आ रही। एक है श्रीमत प्रमाण सेवा मिलती मुरली के टाइम में, उसमें तो डबल जमा है। अगर ज्ञानियों के टाइम में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये संस्कार अंत में धोखा दे देगा माया के रूप में। फिर बोलेंगे मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन माया क्या बोलेगी, नहीं तुम कमजोर हो। तो लंबे समय का अभ्यास चाहिए इसकी, और अभ्यास कौन करेगा, खुद को करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो छोटे छोटे अभ्यास करने हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मति सुजान कहते हैं ना, बचपन से पढ़ते आए। तो प्रैक्टिकल में वो जो ज्ञान सुना प्रैक्टिकल में तो अब करना है, बस इतना तो है। और उस करने के लिए बाबा हमारे में सामर्थ्य भर रहा है, वरदानों से संपन्न कर रहा है, शक्ति दे रहा है, हर चीज़ हमको मार्ग प्रदर्शन कर रहा है, रास्ते पर चलाना सिखा रहा है, हम अपने साथ योग लगाना सिखा रहा है, खजानों से भरपूर कर रहा है, और क्या चाहिए हम सब बच्चों को। तो सब चीज़ों से बाबा संपन्न कर रहे हैं। तो निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत स्थिति। और निश्चय बुद्धि अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो कौन आएगा हमारे सामने, व्यर्थ की यमदूत आएंगे। बाबा ने कहा जो कहते हैं ना विमान लेकर गया कोई, विमान कौन सा है, वो तो विमान वो वाला नहीं है, हमारी उड़ती कला ही विमान का अनुभव कराएगी। अगर व्यर्थ चिंतन है तो यमदूत के रूप में सामने आएंगे, डराएंगे। वो कैसे डराएंगे, भूत कैसे आते हैं, ऐसे आएंगे गुरु, आएंगे पर्दा हिलता ना, भूत कैसे आते, देखा होगा ना पहले हॉरर शो कभी, एक कमरा होता है डरावना, अंधेरा होता है ऐसा, है ना, फिर एक बिजली कौन देती है, फिर पर्दे हिलते हैं, फिर आवाज आती है आती है ना ऐसे। हमारे संकल्प भी डराते हैं। तो जो हमने लंबे समय से भर के रखा ना वो ही हमको दिखाई देगा। तो लंबे समय से हमने अच्छे अच्छे संकल्प भरे हैं, पॉजिटिव संकल्प भरे हैं, अपने को शक्तिशाली बनाया है, स्वयं को वरदानों से भरपूर किया है, तो वो हमारे सामने संस्कार के रूप में वो ही काम करेंगे। फिर उसमें हमको अनुभव होगा कि हाँ हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, अर्थात जिस समय उस शक्ति की जरूरत पड़ेगी वो हमें सहयोग देगी, सहयोग के रूप में सामने आएगी। तो लंबे समय से हमको अभ्यास करना है, कौन से, सोमान में स्थित रहने का, अशरीरी बनने की ड्रिल का, और फरिश्ता स्थिति का, चिंतन लिखने का, बाबा से बातें करने का, रूरूहान करने का, साकाश देने का, प्रकृति को साकाश, तत्वों को, हाँ जी, बाबा को पत्र लिखने का। क्या लिखेंगे बाबा को पत्र में, क्या लिखेंगे, हाँ, और क्या लिख, दिन याद का चार्ट लिखेंगे, और क्या पत्र लिखना, एक बहुत बड़ा प्यार भरा पत्र बाबा को लिखना, तो कैसे लिखेंगे, हर चीज का धन्यवाद। हाँ बाबा ने आपने जो मुझे सुनाया, मैं अभी आपको सुनाती हूँ, आपने हमको क्या क्या सुनाया हो, ये भी बहुत अच्छी बात है ना, तो बाबा खुश हो जाएगा, वाह मेरा बच्चा मुझको ही सुना रहा है क्योंकि दूसरा कोई सुनेगा नहीं हमारे से, वो बोलेगा अपना ज्ञान अपने पास रख, लेकिन बाबा थोड़ा बोलेगा जी, तो बाबा को सुना देने का बाबा खुश हो जाएगा, तो पहले दुखी थोड़ा बाबा जो खुश हो जाएगा हाँ हाँ अभ्यास करना है। तो अलग अलग युक्तियाँ अपना सकते हैं ताकि हम भी बिजी रहें और बाबा भी हमारे हमको देख के बिजी रहे हमारे प्रति, है ना। सब भटकना बंद हो गया देखो, हाँ थैंकफुल, ये बहुत बड़ा एक बहुत अच्छी आदत है, हर चीज़ के लिए थैंकफुल। किसी से भी हमको सहयोग मिलता है, या सवेरे मुरली सुनते हैं जैसे बाबा के लिए याद प्यार नमस्ते करते हैं, तो सुनाने के सुनाने वाले के प्रति धन्यवाद, अच्छा जो यहाँ सेवा करते हैं सबके प्रति धन्यवाद, जो ये कपड़े धुलाई करते हैं उनके प्रति धन्यवाद, प्रकृति के प्रति, हैं जी, बाबा ने जो पेपर दिया उसके लिए भी धन्यवाद, माया को मैं ही भेजता हूँ क्योंकि माया बाबा की बेटी है और हम उसके परिवार वाले हैं, आगे बढ़ाने के लिए बाबा को अपनी बेटी को भेजता है पेपर पास होता तो धन्यवाद निकलता है ऐसा नहीं है कि जैसे स्टूडेंट के होते हैं ना, पढ़ते तो है नहीं, बाबा आप देख लेना, अब जिंदगी भर पढ़ा नहीं है तो बाबा क्या देखेगा उसमें, अरे भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ लो ना, पढ़ने के समय बाबा स्मरण शक्ति को बढ़ाने की ताकत देगा, शक्ति देगा, वो रेस देगा, ताकत देगा, बल देगा, लेकिन मैंने पढ़ाई पढ़ी नहीं और लास्ट में पेपर में बस टिक 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 करके आए तो पास थोड़े हो जाएंगे तो ये तो सारी युक्तियाँ सारी स्टूडेंट लाइफ की हैं, लौकिक स्टूडेंट लाइफ की, लेकिन यहाँ तो ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे लिखो तो थोड़ा चलेगा नहीं यहाँ, हाँ यहाँ तो क्या हम, हाँ सच्चाई सफाई से हम बाबा के प्रति कितना समर्पित हैं, कितना भोले रहते हैं, व्यर्थ के प्रति बाबा के का बेप्रवाह बनना है ना, तो सारे दिन में समर्थ के प्रति नहीं, व्यर्थ के प्रति बेप्रवाह बनना है, तो फरियाद नहीं करनी, नहीं तो बच्चे फरियाद करते हैं। और बाबा ने कहा मेहमान निवाजी, तो जहाँ भी रहते हैं, तो बाबा ने मधुबन निवासियों की महिमा की, लेकिन घरों में भी रहते हैं, जो भी सारे दिन में हमको मिलता है, तो मेहमान निवाजी अर्थात क्या, उसको समय पर सहयोग देना, जो समय पर दूसरे को सहयोग देता है वही महान बनता है, और छोटे छोटे कर्तव्यों से व्यक्ति महान बनता है, बड़ी बड़ी बातों से नहीं है। संसार में जितने महान विभूतियाँ हुई हैं तो इन्होंने अपनी छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा ध्यान रखा हुआ है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते तो बड़ी बातों में अपने आप ही काम हो जाता है। और सारे दिन में हमको बहुत सारा स्कोप रहता है दुआएं जमा करने का, कौन कौन सा स्कोप रहता है, आत्मिक दृष्टि से देखना, और या किसी से बोलते हैं तो उसको यथार्थ सुनना और उसको जवाब देना, उसकी बात को ऐसा नहीं इग्नोर कर देना। अगर सामने वाला टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में और बच्चा अपनी गर्दन नीचे रख के बैठा हुआ है, भले वो पढ़ाई तो पढ़ रहा है लेकिन कम से कम गर्दन तो हिलाए ना, तो टीचर का उसके प्रति मन में दुआएं तो जाएंगी ना। जैसे बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे आगे बैठकर कांध हिलाएं तो अच्छा लगता है, और उससे उसके लिए एग्जांपल कौन सा देते थे बाबा मुरली में, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल के लिए देते ना, दादियों का एग्जाम्पल भी देते, तो बंस मोर बंस मोर। तो हम भी पढ़ाई पढ़ते एक स्टूडेंट की तरह पढ़ते हैं तो सामने वाले टीचर की दुआएं मिलती हैं। अगर हम जैसे बहन जी कहते हैं हाथ उठाओ और हम नहीं उठाते तो हमारा ये देह अभिमान है ये, क्योंकि जो निमित्त टीचर है किसने निमित्त बनाया, भगवान ने निमित्त बनाया, और हम हाथ नहीं उठा रहे हैं तो माना बॉडी कॉन्शियसनेस में पूरा है, पूरा अहंकार जैसे रग रग में भरा हुआ है, और वो आदत पड़ गई उठाएंगे नहीं तो अंत तक कैसे रहेगा, हाथ उठा ही नहीं सकेंगे। अंत में बाबा भी कहेगा हाथ उठाओ तो भी नहीं उठाएंगे क्योंकि आदत तो डाली ही नहीं हमने। तो हर चीज़ हमको सिखाती है छोटी छोटी बातें, उसमें अगर हम हाथ नहीं उठाते हैं तो टीचर तो भले शुभावना से परिपूर्ण हो लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारी जो दूरियां बढ़ जाती हैं क्योंकि हमने सामने वाले की बात को नहीं माना। तो अपने अंदर एक अहंकार रखता, नहीं मैं सामने वाले से अच्छा हूं, एक सूक्ष्म वृत्ति हमारे अंदर वो काम करती रहती है जो हमारी विशेषताओं का दमन करती रहती है, जो हमारे अंदर की विशेषताएं जो उभरनी चाहिए थी निखरनी चाहिए थी तो वो निखरती नहीं है। फिर धीरे धीरे वो बातें थोड़ी 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 बातें बहुत सारी ढेर लग जाता है, बोझ लग जाता है, और फिर क्या होता है और दूरियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर परिवार से दूर हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमको दुआएं जमा करते हैं जी, हाँ ईगो हो जाता है। तो क्या करना है, सदा निश्चिंत रहना है, दुआएं देनी है। नहीं पॉइंट कौन सा चल रहा था, नहीं निश्चय नहीं और चल रहा था, सारे दिन में जमा कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जब मेहमान निवाजी देखो कहाँ से कहाँ निकल गए, ऐसे भागती है बुद्धि। तो मेहमान निवाजी सारे दिन में संबंध संपर्क के हमको हमारे साथ कोई भी आता है तो हर एक ओम मिठास, भगवान ने हमारे जीवन में मिठास भरी है, जहर नहीं भरा हुआ है, कड़वे बोल नहीं भरे हुए हैं, भगवान के महावाक्य क्या है, मिठास है। बाबा कौन है, स्वीट का पहाड़ है, तो स्वीट का पहाड़ हमको क्या देगा, स्वीट ही देगा ना, अमृत ही देगा। तो अभी मुरलियों में आने वाला स्वीट का पहाड़ आएगा एक दिन, परसों भी तो ना स्वीटेस्ट की सारी मुरली थी, उसी में था स्वीटेस्ट का पहाड़, तो उस पहाड़ के पास हम चले गए ऐसे, ठीक है। तो हम स्वीट के पहाड़ के बच्चे, तो हमारे जीवन में थोड़ा स्वीट तो जीव से शायद तो निकलना चाहिए ना, है ना। तो सबके साथ मीठा बोले तो हम दुआएं जमा कर सकते हैं, तो मेहमान नवाजी करने से हम महान बन जाएंगे। और क्या कहा बाबा ने, इस जीवन में मर्यादाएं क्या हैं, कदम, जैसे ब्रह्मा बाप के कदम हैं ऐसे इस ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कितनी सारी मर्यादाएं मिली हम सबको, देखने की मर्यादा, बोलने की, सोचने की, अमृत वेले उठने की, सबके साथ कैसे बोलना, व्यवहारिकता में कैसे आना है, कितनी सारी ढेर सारी मर्यादाएं हैं, भोजन की, फैमिलियरिटी में ज़्यादा नहीं आना है, न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस, गंभीरता रमणीकता दोनों का बैलेंस है ना, टाइम के प्रति टाइम कैसे व्यतीत करना है, चिंतन कैसे करना है, मुरली कैसे सुननी है, हर एक बात की बाबा ने हम सबको मर्यादा कील कील के अंदर रखा हुआ है। लेकिन मर्यादाओं का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो रावण बार बैठा हुआ है, क्या बोलेगा, तुम तो कमजोर हो, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हो, क्योंकि हमने लकीर को क्रॉस कर दिया। और रावण तो अलग अलग रूप से आएगा, कैसे आएगा, वो तो आया था ब्राह्मण बन के, अभी इधर कैसे आएगा, इधर भी ब्राह्मण बन के आएगा, सफेद कपड़ों में, क्या बोलेगा, मुरली तो बाद में सुन लेंगे हैं, और क्या बोलेगा, योग तो बाद में कर लेंगे, रोज ही करते रहते हैं, एक दिन मिस कर दे तो क्या बड़ी बात है, सब्र, अच्छा अमृत वेले सुला देती है, कैसे सुलाती है, सब अलार्म को हाथ मार देते हैं ऐसे तो अमृत वेले सुला देती है माया, है ना, तो माया को सुला देना माया को भी सवेरे सवेरे अच्छा लगता है सुलाना, लोरी देने आती है ना, सोचती है हाँ अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो, और माया भी उल्टा गीत गाती है मेरे लाडले सो जाओ, वो खुद जाग जाती है, हमको सुला देती है कि बच्चे थक गए थे सारा दिन और थोड़ी नींद कर ले। लेकिन बाबा हम सबको अमृत वेले क्या कर देता, फुल चार्ज कर देता है एकदम। तो मर्यादाएं हमारे जीवन का कदम है, उनके प्रति बेपरवाह नहीं बनना है, लापरवाह नहीं बनना है, बेफिक्र बादशाह तो बनना है लेकिन मर्यादाओं के प्रति बेपरवाह नहीं बनना है। और बाबा ने कहा स्नेह के सागर हो तुम बच्चे, स्नेह के लोटा नहीं हो, तो स्नेह का स्टॉक भरपूर है, अगर क्रोध करता है एक बार दो बार दस बार तो क्या करो, उसको स्नेह दो। और बाबा ने बोला 20 बार करे तो दाता के बच्चे, जो हमारे पास होगा वही तो देंगे ना। अगर क्रोध आता भी है तो इसका अर्थ है कि स्नेह के स्टॉक में कमी है। तो सवेरे सवेरे बाबा ने कहा परमात्म प्यार से अपने आप को इतना भर लो, इतना भर लो, सारे दिन में वो प्यार बहता रहे, नदी की तरह, गंगा की तरह बहता रहे, स्नेह का स्टॉक भरपूर हो। और क्या कहा बाबा ने, निरंतर योगी कौन है, स्नेह से स्मीप का संबंध, और जो दिल के स्नेह से संबंधों के आधार पर समीपता का अनुभव करते हैं वो कौन है, निरंतर योगी। और सफलता किसको मिलती है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही, उनको ही सफलता मिलती है। तो ऐसे बाबा के माँ बाप के बहुत सारे भी बीच में छूट जाते हैं, इतनी मुरली है याद ही नहीं रहती है, लेकिन फिर भी छोड़ने नहीं है, करते रहना करते रहना। तो कम से कम बुद्धि थोड़ी अंदर से स्वच्छ तो होगी, धीरे धीरे ज्ञान रत्न ठहरेंगे ना, नहीं तो बुद्धि स्वच्छ कैसे होगी। तो सवेरे से लेकर शाम तक मुरली को दौड़ाते रहना, बुद्धि में दौड़ाते रहना दौड़ाते रहना, वो हमारे संस्कार बन जाए। तो ये थी निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित विजय। मुरली कब थी, 9 जनवरी 1995। तो कितने, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, माला में रहना है तो दूरियां नहीं बढ़ानी है, व्यर्थ चिंतन नहीं चलाना है, क्यों क्या में नहीं जाना है, फरियाद नहीं करनी है, मर्यादाओं के कदम पर चलना है, स्नेह का स्टॉक भरपूर रखना है, मास्टर स्नेह का सागर बनना है, क्रोध नहीं करना है, फरिश्ता बनना है, बाप के कदम पर, कितने कदम रखने, हर कदम रखना है। अच्छा, ओम शांति।